नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाटली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, डीप लर्निंग विद टेंसरफ्लो। एन के रास अमिता कपूर, एंटोनियो गुली और सुजीत पाल की तकनीकी मार्गदर्शिका है, जिसका तीसरा संस्करण टेंसरफ्लो 2x की कार्यप्रणाली पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पाठक को केवल न्यूरल नेटवर्क की अवधारणाएं बताना नहीं, बल्कि उन्हें केरास के उच्च स्तरीय API के माध्यम से बनाना, प्रशिक्षित करना और वास्तविक परिवेशों में तैनात करना सिखाना है। पुस्तक में पर्यवेक्षित और अप्रेक्षित अधिगम से लेकर गहन तथा सुदृढ़ीकरण अधिगम तक का व्यापक दायरा है। प्रतिगमन, इमेज वर्गीकरण, अनुक्रम डेटा, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और जनरेटिव मॉडल जैसे विषयों को पाइथन कोड के साथ जोड़ा गया है। टेंसरफ्लो की ईगर एग्जीक्यूशन शैली और केरास की सरल मॉडल निर्माण पद्धति पुस्तक की व्यावहारिक दिशा को स्पष्ट करती है। साथ ही यह क्लाउड, मोबाइल और उत्पादन प्रणालियों के संदर्भ में मॉडल तैनाती पर भी ध्यान देती है, इसलिए यह पुस्तक सिद्धांत, कार्यान्वयन और इंजीनियरिंग निर्णयों के बीच एक उपयोगी सेतु का काम करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले टेंसरफ्लो 2x और केरास के जरिए मॉडल निर्माण की व्यावहारिक आधारशिला। पुस्तक का केंद्रीय आधार टेंसरफ्लो और केरास का संयोजन है। टेंसरफ्लो गणना, प्रशिक्षण और विभिन्न हार्डवेयर या तैनाती परिवेशों के लिए ढांचा देता है, जबकि केरास परतों और मॉडलों को अपेक्षाकृत संक्षिप्त ढंग से व्यक्त करने वाला API उपलब्ध कराता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि गहन अधिगम में केवल गणितीय मॉडल चुनना पर्याप्त नहीं होता। डेटा को सही आकार देना, परतों का क्रम तय करना, हानिफलन और अनुकूलक चुनना, प्रशिक्षण की प्रगति देखना तथा नए डेटा पर मूल्यांकन करना भी उतना ही आवश्यक है। पुस्तक इन चरणों को कोड आधारित उदाहरणों के माध्यम से जोड़ती है। टेंसरफ्लो 2x की ईगर एग्जीक्यूशन शैली विशेष रूप से सीखने और डिबगिंग के लिए उपयोगी संदर्भ देती है, क्योंकि गणना अधिक प्रत्यक्ष ढंग से देखी जा सकती है। केरास का सीक्वेंशियल तरीका सरल रैखिक मॉडलों के लिए प्रवेश बिंदु है, जबकि अधिक जटिल नेटवर्कों में लचीले मॉडल निर्माण की जरूरत पड़ती है। पुस्तक का व्यावहारिक मूल्य इसी में है कि वह API सुविधा को मॉडलिंग अनुशासन का विकल्प नहीं मानती। पाठक को यह समझना पड़ता है कि सरल कोड के पीछे डेटा, उद्देश्य और मूल्यांकन से जुड़े निर्णय मौजूद रहते हैं। दूसरा, पर्यवेक्षित और अप्रेक्षित अधिगम में समस्या के अनुरूप मॉडल चयन। पुस्तक पर्यवेक्षित और अप्रेक्षित अधिगम को अलग उद्देश्यों वाली कार्यप्रणालियों के रूप में रखती है। पर्यवेक्षित अधिगम में इनपुट के साथ लक्ष्य या लेबल उपलब्ध होते हैं, इसलिए प्रतिगमन में निरंतर मान का अनुमान और वर्गीकरण में श्रेणी का अनुमान लगाया जाता है। मॉडल का प्रशिक्षण अनुमानित परिणाम और ज्ञात लक्ष्य के अंतर को घटाने पर आधारित होता है। इसके विपरीत अप्रेक्षित अधिगम में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, इसलिए डेटा की आंतरिक संरचना, संपीड़ित प्रतिनिधित्व या छिपे पैटर्न अधिक महत्वपूर्ण बनते हैं। यह विभाजन पाठक को यह तय करने में मदद करता है कि किसी समस्या में सफलता का अर्थ क्या है। यदि लेबल मौजूद है तो सटीकता, त्रुटि या अन्य मापदंडों से अनुमान जांचा जा सकता है। यदि लेबल नहीं है तो प्रतिनिधित्व की उपयोगिता और प्राप्त संरचना की सार्थकता को संदर्भ के अनुसार परखना पड़ता है। पुस्तक का दायरा केवल पारंपरिक मॉडल तक सीमित नहीं है, क्योंकि गहन नेटवर्क इन दोनों प्रकार की समस्याओं में प्रयुक्त हो सकते हैं। फिर भी नेटवर्क की जटिलता को समस्या की प्रकृति का विकल्प नहीं समझना चाहिए। सही प्रश्न, उपयुक्त डेटा और विश्वसनीय मूल्यांकन के बिना उन्नत आर्किटेक्चर भी उपयोगी परिणाम की गारंटी नहीं देता। यह विषय मॉडल चयन को तकनीकी फैशन के बजाय डेटा और लक्ष्य से जोड़ता है। तीसरा, कन्वोल्यूशनल और रिकरेंट नेटवर्कों से चित्र तथा अनुक्रम डेटा का विश्लेषण। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पुस्तक के दो प्रमुख अनुप्रयोगात्मक स्तंभ है। कन्वोल्यूशनल नेटवर्क चित्रों जैसे स्थानिक डेटा के लिए उपयोगी है, क्योंकि वे छोटे स्थानीय पैटर्नों को पहचानते हुए क्रमशः अधिक जटिल दृश्य विशेषताएं सीख सकते हैं। साझा भार और स्थानीय रिसेप्टिव क्षेत्र जैसे विचार इन्हें हर पिक्सेल के लिए अलग पैरामीटर रखने वाले साधारण पूर्णतः संयोजित नेटवर्क से अधिक उपयुक्त बनाते है। इससे इमेज वर्गीकरण जैसी समस्याओं में संरचना का लाभ लिया जा सकता है। दूसरी ओर, रिकरेंट नेटवर्क अनुक्रमों में क्रम और पूर्व संदर्भ को महत्व देते हैं। भाषा, पाठ और समय के साथ बदलने वाले डेटा में किसी तत्व का अर्थ अक्सर उसके पहले आए तत्वों से जुड़ा होता है, इसलिए अनुक्रम को स्वतंत्र पंक्तियों की तरह देखना सूचनात्मक हो सकता है। पुस्तक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तथा अनुक्रम मॉडलिंग के संदर्भ में इस जरूरत को समझाती है। दोनों आर्किटेक्चर एक व्यापक सिद्धांत दिखाते हैं, डेटा की संरचना के अनुरूप इंडक्टिव बायस चुनना। चित्र में निकटता महत्वपूर्ण है, अनुक्रम में क्रम महत्वपूर्ण है। पाठक के लिए मुख्य सीख यह है कि आर्किटेक्चर का चुनाव नाम की लोकप्रियता से नहीं, डेटा में मौजूद संबंधों से होना चाहिए। प्रशिक्षण लागत, उपलब्ध डेटा और सामान्यीकरण की जांच भी इसी चुनाव के अनिवार्य हिस्से हैं। चौथा, ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव मॉडल और ग्राफ नेटवर्कों से उन्नत प्रतिनिधित्व सीखना। पुस्तक का उन्नत भाग ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, ऑटो एनकोडर, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर और ग्राफ न्यूरल नेटवर्क जैसे मॉडलों तक पहुंचता है। इनका साझा लक्ष्य अलग अलग प्रकार के डेटा से उपयोगी प्रतिनिधित्व सीखना है, पर उनकी कार्यविधियां भिन्न हैं। ट्रांसफॉर्मर ध्यान तंत्र के जरिए अनुक्रम के अलग हिस्सों के बीच संबंधों को मॉडल कर सकते हैं। यह विशेषता भाषा संबंधी कार्यों में उपयोगी है, जहां दूर स्थित शब्द या टोकन भी अर्थ बदल सकते हैं। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क में एक मॉडल कृत्रिम नमूने बनाता है और दूसरा उनके वास्तविक या कृत्रिम होने का आकलन करता है। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जनरेटर डेटा वितरण का बेहतर अनुमान सीखने का प्रयास करता है। ऑटो एनकोडर और वेरिएशनल ऑटो एनकोडर संपीड़ित गुप्त प्रतिनिधित्व तथा पुनर्निर्माण की अवधारणा पर आधारित है। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क उन स्थितियों के लिए प्रासंगिक है जहां डेटा इकाइयों के बीच संबंध स्वयं सूचना का मुख्य स्रोत हो। यह व्यापकता पुस्तक की ताकत है, लेकिन यह चेतावनी भी देती है कि हर उन्नत मॉडल हर समस्या का समाधान नहीं है। जनरेटिव गुणवत्ता का मूल्यांकन कठिन हो सकता है और जटिल आर्किटेक्चर को अधिक डेटा, गणना तथा सावधान प्रयोग की जरूरत होती है, इसलिए इन तकनीकों को उद्देश्यपूर्ण चयन के रूप में देखना चाहिए। अंत में, सुदृढ़ीकरण अधिगम और उत्पादन तैनाती में मॉडल से प्रणाली तक की यात्रा। पुस्तक सुदृढ़ीकरण अधिगम और तैनाती को शामिल करके गहन अधिगम को केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रखती। सुदृढ़ीकरण अधिगम में एजेंट वातावरण के साथ क्रिया करता है और पुरस्कार संकेत के आधार पर नीति सीखता है। यह वर्गीकरण से अलग है क्योंकि सही उत्तरों का स्थिर लेबल संज्ञा आवश्यक नहीं होता। एजेंट को तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक परिणाम के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, इसीलिए अन्वेषण, पुरस्कार की परिभाषा और वातावरण की गुणवत्ता परिणामों को गहराई से प्रभावित करते हैं। पुस्तक का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष उत्पादन संदर्भ है। प्रयोगशाला में अच्छा परिणाम देने वाला मॉडल तभी उपयोगी उत्पाद बनता है जब उसे विश्वसनीय ढंग से चलाया, पैकेज किया और उपयुक्त मंच पर तैनात किया जा सके। क्लाउड और मोबाइल परिवेशों का उल्लेख इस व्यावहारिक अंतर को रेखांकित करता है। मोबाइल में आकार, विलंब और संसाधन सीमाएं अहम होती हैं, जबकि बड़े उत्पादन परिवेश में मापनीयता और संचालन संबंधी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हो सकती है। ऑटोएमएल का संदर्भ भी मॉडल विकास को तेज करने वाली प्रक्रियाओं की ओर संकेत करता है, फिर भी तैनाती प्रशिक्षण का अंतिम बटन नहीं है। वास्तविक डेटा में बदलाव, प्रदर्शन की निगरानी और उपयोग के संदर्भ को लगातार देखना पड़ता है। यह विषय पाठक को मॉडल लेखक से प्रणाली उन्मुख मशीन लर्निंग अभ्यासी बनने की दिशा देता है। निष्कर्ष में, डीप लर्निंग विद टेंसरफ्लो एंड केरास उन विद्यार्थियों, डेटा वैज्ञानिकों और सॉफ्टवेयर डेवलपरों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें पायथन का आधार है और जो टेंसरफ्लो 2x के साथ वास्तविक गहन अधिगम मॉडल बनाना चाहते हैं। यह पूर्णतः शुरुआती प्रोग्रामिंग पुस्तक नहीं है, ना ही इसका मुख्य उद्देश्य केवल गहन गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत करना है। इसका वास्तविक लाभ उस पाठक को मिलेगा जो अवधारणा को कोड, प्रयोग और तैनाती के साथ जोड़कर सीखना चाहता है, प्रतिगमन से लेकर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, रिकरेंट नेटवर्क, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव मॉडल, ग्राफ नेटवर्क और सुदृढ़ीकरण अधिगम तक की विषय सीमा इसे एक व्यापक संदर्भ ग्रंथ बनाती है। इसके साथ क्लाउड, मोबाइल और उत्पादन परिवेश पर ध्यान यह याद दिलाता है कि मॉडल की उपयोगिता प्रशिक्षण नोटबुक से आगे तय होती है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें किसी एक आर्किटेक्चर, केवल सिद्धांत या केवल आरंभिक केरास उदाहरणों पर केंद्रित रहती है। यह पुस्तक अपेक्षाकृत अलग इसलिए है कि यह विविध मॉडल परिवारों को एक ही टेंसरफ्लो और केरास कार्यप्रवाह में रखती है और उनके अनुप्रयोग की दिशा भी दिखाती है। हालांकि पाठक को सभी तकनीकों को एक साथ अपनाने के बजाय अपनी समस्या, डेटा और संसाधनों के अनुसार चयन करना चाहिए। पुस्तक को क्रम से पढ़ना और प्रत्येक उदाहरण को बदलकर चलाना अधिक लाभकारी रहेगा। इस तरह यह केवल एपीआई सीखने का साधन नहीं, बल्कि मॉडलिंग, मूल्यांकन और तैनाती के बीच संबंध समझने वाली उपयोगी व्यावहारिक मार्गदर्शिका बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं अमिता कपूर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।